एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
स्वागत है श्रोताओं।
आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेजों पर बात करने वाले हैं। ये हैं द जर्नल्स ऑफ लुईस एंड क्लार्क।
नमस्कार। और ये सिर्फ मतलब कोई डायरी या रोज नामचा नहीं है।
हाँ, बिल्कुल,
ये तो एक पूरी कहानी है, कैसे एक महाद्वीप खुलता गया, और वो भी उन लोगों की नजरों से जिन्होंने पहली बार, खैर यूरोपीय नजरिए से, उसे पार किया।
हाँ, सही कहा। और ये जर्नल्स खास इसलिए भी हैं क्योंकि ये सिर्फ एक यू नो एडवेंचर स्टोरी नहीं बताते।
नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें झांकने पर अमेरिका के वो शुरुआती दिन दिखते हैं, पश्चिम की तरफ बढ़ने की वो सोच, वो महत्वाकांक्षा,
और वो इंसानी पहलू भी, जो मुश्किलें आई, जो जटिलताएं थी।
हाँ, और इनका एक खास मकसद था, एक अनजान दुनिया को जानना, उसे समझना और उसे दर्ज करना।
बिल्कुल। और देखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट समझना भी जरूरी है। ये बातें 1803 की, जब लुइजियाना खरीद हुई।
हाँ, अमेरिका का नक्शा ही बदल गया रातों रात, साइज डबल हो गया।
तो उस वक्त के राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन, वो बड़े उत्सुक थे, जानना चाहते थे कि भाई मिसिसिपी नदी के पार आखिर है क्या,
क्या कोई रास्ता है प्रशांत महासागर तक, पानी का रास्ता।
हाँ, और वहाँ कौन लोग रहते हैं, जमीन कैसी है, पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ।
तो इस पूरे अभियान का, इस यात्रा का लक्ष्य ही था इन सवालों के जवाब ढूंढना,
एक तरह से उस नई जमीन का पूरा खाका तैयार करना। उनका रोल यही था।
और इन जर्नल्स को जब हम पढ़ते हैं तो एक बात तो साफ हो जाती है।
क्या?
कि पश्चिम कोई वीरान जंगल नहीं था, वहां पहले से लोग थे, बकायदा बसे हुए समाज थे, मूल अमेरिकी समाज।
अच्छा, मतलब काफी उन्नत थे वो।
हाँ, काफी व्यवस्थित। तो इस दल का सामना सिर्फ मुश्किल मौसम या रास्तों से नहीं था,
बल्कि लोगों से भी था, जटिल मानवीय रिश्तों से, संस्कृतियों से।
बिल्कुल। अवसर भी थे तो चुनौतियां भी थीं, और इन जर्नल्स का एक बड़ा मकसद इन दोनों चीजों का आकलन करना भी था।
तो फिर सवाल उठता है कि ये जर्नल्स लिखे किसने? जाहिर है, नाम से ही पता चलता है, मेरीवेदर लुईस और विलियम क्लार्क।
हाँ, पर दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि वो कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं थे।
नहीं, वो तो लीडर थे इस अभियान के, कप्तान थे,
जिन्हें राष्ट्रपति जेफरसन ने खास तौर पर यह जिम्मेदारी दी थी, यात्रा को लीड करना और साथ ही हर चीज का रिकॉर्ड रखना। दस्तावेजीकरण ही उनका मुख्य काम था,
जानकारी इकट्ठा करना।
बिल्कुल। जैसे मेरीवेदर लुईस को ही लीजिए, 1774 से 1809 तक। वो एक फौजी थे, प्रकृति में उनकी रुचि थी,
और जेफरसन के पर्सनल सेक्रेटरी भी रह चुके थे।
हाँ, और कहते हैं कि जेफरसन ने खुद उन्हें इस मिशन के लिए तैयार किया था, मतलब बॉटनी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, थोड़ी बहुत मेडिसिन भी सिखाई।
अच्छा।
उनमें वो एक साइंटिफिक अप्रोच थी, चीजों को बारीकी से देखने और समझने की लगन, जेफरसन के लक्ष्यों के लिए ये जरूरी था।
और दूसरी तरफ थे विलियम क्लार्क, 1770 से 1838। वो एक अनुभवी फौजी थे और जिन्हें हम फ्रंटियर मैन कहते हैं, मतलब सीमावर्ती इलाकों के जानकार।
हाँ, उन्हें जमीनी हकीकत की ज्यादा पकड़ थी,
नक्शे बनाने में माहिर थे, रास्ता खोजने में, नेविगेशन में, और शायद सबसे जरूरी, मूल अमेरिकी कबीलों से बातचीत करने में।
सही। तो जहां लुईस के पास वो किताबी ज्ञान और वैज्ञानिक नजर थी, वहीं क्लार्क के पास जमीनी तजुर्बा और प्रैक्टिकल समझ थी।
कमाल की जोड़ी थी वाकई।
और उनकी बातों पर यकीन इसलिए होता है क्योंकि ये सब उन्होंने खुद देखा, खुद जिया।
हाँ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस।
वो पहले यूरोपीय थे जिन्होंने उत्तरी अमेरिका को, मतलब मेक्सिको के उत्तर से, जमीनी रास्ते से पार किया। सोचिए जरा,
2 साल से ज्यादा का वक्त, अनजान इलाके, अनजान लोग, हर दिन एक नई चुनौती।
और उन्होंने जो भी देखा, जो महसूस किया, उसे पूरी ईमानदारी से दर्ज किया। इसीलिए ये जर्नल्स इतने महत्वपूर्ण हैं। ये इतिहास के प्राइमरी सोर्स हैं।
सीधे उस अनुभव से निकले हुए।
बिल्कुल।
तो ये जर्नल्स आखिर हैं क्या चीज, मतलब किस तरह का दस्तावेज है ये?
ये असल में एक मिला जुला दस्तावेज है। इसमें रोज की घटनाएं हैं, क्या हुआ, कहाँ गए।
अच्छा।
वैज्ञानिक टिप्पणियां हैं, पेड़ पौधे, जानवर, फिर अलग अलग कबीलों से जो मुलाकातें हुई, जो समझौते हुए, उनका रिकॉर्ड है,
और साथ में उनके अपने विचार, उनकी भावनाएं भी।
हाँ, वो भी दर्ज है। तो इसे हम एक एडवेंचर कहानी भी कह सकते हैं, एक साइंटिफिक कैटलॉग भी, शुरुआती दौर का एथनोग्राफिक अध्ययन भी, और एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी।
मतलब जितने बहुआयामी इस मिशन के लक्ष्य थे, उतने ही ये जर्नल्स भी हैं।
सही कहा। और ये पाठक को एक साथ 2 यात्राओं पर ले जाते हैं।
2 यात्राएं कैसे?
एक तो भौगोलिक यात्रा, सेंट लुइस से शुरू होकर प्रशांत महासागर तक और फिर वापस करीब 8,000 मील यानी लगभग 13,000 किलोमीटर।
बाप रे।
और दूसरी है एक बौद्धिक यात्रा, नई जानकारी, नई समझ, एक नई दुनिया की खोज।
हाँ, ये बात सही है। मई 1804 में शुरू हुई ये यात्रा मिसौरी नदी के उल्टी तरफ चढ़ते हुए,
फिर वो विशाल रॉकी पहाड़ पार किए, फिर कोलंबिया नदी के साथ नीचे उतरे प्रशांत तट तक और फिर वापस भी आए। सोच कर ही लगता है कितना मुश्किल रहा होगा।
बिल्कुल। और इस लंबे सफर में काम क्या क्या हुआ? जैसे लुइस ने आपने बताया, पेड़ पौधों और जानवरों का रिकॉर्ड रखा।
हाँ, 200 से ज्यादा ऐसे पौधे और कई जानवर जो उस समय विज्ञान के लिए एकदम नए थे।
और दर्जनों मूल अमेरिकी कबीलों से मिले वो लोग।
उनके साथ बातचीत का पूरा ब्यौरा है, उनकी संस्कृति, भाषा, रहन सहन, सामाजिक ढांचा, सबके बारे में बहुत कीमती जानकारी मिलती है।
ये तो सीधे सीधे जेफरसन के जो वैज्ञानिक और मानवशास्त्री लक्ष्य थे उनको पूरा कर रहा था।
बिल्कुल। और क्लार्क के नक्शे, उन्हें कैसे भूल सकते हैं?
हाँ, वो तो बहुत मशहूर हैं।
उन्होंने जो नक्शे बनाए वो इतने सटीक थे कि उन्होंने पश्चिमी उत्तरी अमेरिका के भूगोल की पहली सही समझ दी। कई दशकों तक वही नक्शे इस्तेमाल होते रहे।
कमाल है।
और दिलचस्प बात यह है कि शुरू में ये जर्नल सिर्फ राष्ट्रपति जेफरसन और सरकार के लिए थे, एक तरह से मिशन की रिपोर्ट।
अच्छा, आम लोगों के लिए नहीं थे शुरू में?
नहीं, लेकिन आज ये इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, मानव विज्ञानियों और अमेरिकी इतिहास में रुचि रखने वाले किसी भी आम पाठक के लिए एक अनमोल खजाना है।
चलिए इस महायात्रा के कुछ अहम पड़ावों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला फेज क्या था?
पहला चरण था तैयारी और मिसौरी नदी पर चढ़ाई। ये चला मई से अक्टूबर तक 1804 तक।
इसमें क्या क्या दर्ज है?
इसमें है कि दल कैसे बना, लोग कैसे भर्ती हुए, और फिर मिसौरी नदी के जो तेज बहाव है उसके खिलाफ उनकी वो शुरुआती मुश्किल यात्रा।
हाँ, नदी के बहाव को उल्टा जाना तो मुश्किल होता ही है।
रोज कितना चले, मौसम कैसा था, रास्ते में क्या खास दिखा, और ओटो, पोंका, सियू जैसे कबीलों से शुरुआती मुलाकातें कैसी रहीं, सब नोट किया गया।
सियू कबीले के साथ तो शायद कुछ तनाव भी हुआ था।
अच्छा।
और यहीं से उनका वो तरीका पक्का हुआ, हर चीज को व्यवस्थित तरीके से नोट करना, जो मिशन का एक बुनियादी लक्ष्य था।
हाँ, वो शुरुआती दौर मुश्किल रहा होगा। फिर आया दूसरा चरण, फोर्ट मैंडन में सर्दी बिताना, अक्टूबर 1804 से अप्रैल 1805 तक।
हाँ, उन्होंने आज के नॉर्थ डकोटा में मंडन और हिदात्सा कबीलों के गांवों के पास अपना कैंप बनाया। अब यात्रा तो रुकी हुई थी,
तो फोकस किस पर था?
फोकस गया वहां के लोगों को समझने पर। जर्नल्स में इन कबीलों की खेती के तरीके, उनके ट्रेड नेटवर्क्स, सामाजिक ढांचा और मुश्किल हालात में वो कैसे जीते हैं, इसका बहुत अच्छा वर्णन है।
और यही वो साकागाविया से मिले थे ना?
हाँ, यही उनकी मुलाकात हुई साकागाविया नाम की एक शोशोन महिला और उनके पति टूसन कैर्बोनियो से। और साकागाविया का जो रोल रहा आगे चलकर कमाल का था।
हाँ, सुना है उनके बारे में।
इस दौरान साइंटिफिक काम भी चलता रहा और पहली रिपोर्टें और स्पेसिमन वापस जेफरसन के पास भेजे गए। रिपोर्टिंग भी तो करनी थी ना?
बिल्कुल। इसके बाद शुरू हुआ असली एडवेंचर, है ना? तीसरा चरण, अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश, अप्रैल से अगस्त 1805।
हाँ, अब मंडन गांव से आगे वो बिल्कुल अनजान इलाके में थे जहां पहले कोई यूरोपियन नहीं गया था।
जर्नल्स में क्या महसूस होता है इस दौर के बारे में?
पढ़ते हुए लगता है कि दल में उत्साह भी था और एक अनजाना सा डर भी।
और यहीं उनकी पहली मुठभेड़ हुई उस खूंखार ग्रिजली भालू से।
हाँ, एक ऐसा जानवर जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था और जो बहुत खतरनाक साबित हुआ।
फिर वो मिसौरी नदी का ग्रेट फॉल्स आया।
वो एक जबरदस्त फिजिकल चैलेंज था। सोचिए, मीलों तक अपनी भारी नावें और सारा सामान जमीन पर घसीट कर ले जाना पड़ा।
बाप रे।
और इसी मोड़ पर उन्हें शोशोन कबीले की तलाश तेज करनी पड़ी, क्योंकि आगे रॉकी पहाड़ थे और उन्हें पार करने के लिए घोड़ों की सख्त जरूरत थी।
और फिर वो कमाल का इत्तेफाक हुआ।
हाँ, वो तो किसी कहानी जैसा लगता है। आखिरकार लुइस ने शोशोन लोगों के एक दल से संपर्क साधा। उनके लीडर थे चीफ केमावेट।
और वो साकागाविया के भाई निकले?
हाँ, बिछड़े हुए भाई। इस मुलाकात ने न सिर्फ घोड़ों का इंतजाम किया बल्कि शायद दल का हौसला भी बहुत बढ़ाया होगा। ये दिखाता है कि कैसे पर्सनल रिश्ते भी इस बड़े मिशन का हिस्सा बन गए।
बिल्कुल। अब आया चौथा चरण, पहाड़ पार करना और कोलंबिया नदी से उतरना, अगस्त 1805 से मार्च 1806 तक। ये शायद सबसे कठिन दौर था।
हाँ, शायद पूरी यात्रा का सबसे मुश्किल। वो बिटरूट पहाड़ों को पार कर रहे थे और वहीं बर्फबारी में फंस गए। वो भी मौसम से पहले।
जर्नल्स में इसका जिक्र कैसा है?
बहुत मार्मिक वर्णन है, भूखमरी, जमा देने वाली ठंड, हड्डियों तक कंपा देने वाली थकावट।
हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें अपने घोड़े खाने पड़े।
घोड़े और यहाँ तक कि मोमबत्तियाँ तक, सोचकर इसे हैरान होती है।
वाकई भयानक रहा होगा। जब वो किसी तरह पहाड़ों से बाहर निकले लगभग मरने की हालत में, तो नेज पर्स कबीले ने उन्हें बचाया।
हाँ, फिर से ये बात सामने आई कि मूल अमेरिकी मदद के बिना ये अभियान शायद पूरा ही नहीं हो पाता। उन्होंने खाना दिया, आसरा दिया,
फिर थोड़ी जान आई तो नई नावें बनाई
और क्लियर वाटर, स्नेक और कोलंबिया नदियों के तेज बहाव के साथ तेजी से नीचे की ओर बढ़े। और फिर आया वो पल,
ओशियन इन व्यू, ओह द जॉय।
हाँ, नवंबर 1805 में क्लार्क ने लिखा, समुद्र दिख रहा है, ओह क्या खुशी है। आखिरकार 1.5 साल की मशक्कत के बाद वो प्रशांत महासागर पहुंच गए थे, एक बड़ा लक्ष्य हासिल हुआ।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, अब वापसी भी तो करनी थी। पांचवा चरण था प्रशांत तट पर सर्दी बिताना और वापसी की तैयारी मार्च 1806 तक।
हाँ, उन्होंने अपनी दूसरी सर्दी कोलंबिया नदी के मुहाने के पास फोर्ट क्लैटसॉप नाम की एक अस्थायी छावनी में बिताई।
ये वक्त कैसा था?
जर्नल्स बताते हैं कि ये काफी निराशाजनक था। लगातार बारिश, सीलन, ठंड, बीमारियां, पिस्सू और खाने की कमी।
लेकिन काम फिर भी चलता रहा।
हाँ, काम नहीं रुका। उन्होंने नमक बनाया, शिकार करते रहे और स्थानीय क्लैटसॉप और चिनुक लोगों और वहां के इकोसिस्टम का अध्ययन जारी रखा। लुइस ने पेड़ पौधों और जानवरों पर ढेरों नोट्स लिखे।
और वो वोटिंग वाली बात भी इसी दौरान हुई थी?
हाँ, एक दिलचस्प घटना थी। जब सर्दियों में रुकने की जगह चुनने के लिए वोटिंग हुई, तो उसमें यॉर्क, जो क्लार्क के गुलाम थे, और साकागावया, दोनों ने वोट डाला। उस जमाने के हिसाब से ये वाकई में एक असाधारण बात थी।
और फिर आया आखिरी चरण, छठा, घर वापसी, मार्च से सितंबर 1806।
वापसी की यात्रा थोड़ी तेज थी। बिटररूट पहाड़ों को फिर से पार करने के बाद इस बार फिर नेज पर्स की मदद से लुइस और क्लार्क ने एक बड़ा डेयरिंग फैसला लिया।
क्या?
उन्होंने दल को दो हिस्सों में बांट दिया ताकि और ज्यादा इलाके का पता लगाया जा सके। ये उनके बढ़ते कॉन्फिडेंस और मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने की उनकी जिद को दिखाता है।
अच्छा, लुइस कहाँ गए और क्लार्क कहाँ?
लुइस एक दल के साथ मारियास नदी की ओर गए, जहाँ ब्लैकफीट योद्धाओं के साथ उनकी वो एकमात्र हिंसक झड़प हुई जिसमें दो योद्धा मारे गए।
ओह।
और क्लार्क दूसरा दल लेकर दक्षिण में येलोस्टोन नदी का पता लगाने निकल गए।
और फिर ये दोनों दल वापस मिल गए?
हाँ, अगस्त में मिसौरी नदी पर फिर से मिले और तेजी से नीचे की ओर बढ़े। 23 सितंबर 1806 को वे सेंट लुइस वापस पहुंचे।
और उनका स्वागत हुआ होगा जोरदार?
बिल्कुल, नायकों जैसा स्वागत हुआ। वो अपना मिशन पूरा करके लौटे थे।
इन जर्नल्स को पढ़ते हुए कई गहरे विषय, कई थीम्स उभर कर आती हैं। पहली तो एकदम साफ है, इंसानी सहन शक्ति और दृढ़ता की मिसाल।
हाँ, वो तो है ही। जिस तरह की मुश्किलों का उन्होंने सामना किया, भूख, ठंड, थकान, बीमारी, खतरे, वो वाकई हैरान करने वाला है। ये दिखाता है कि इंसान में कितनी क्षमता है।
दूसरा है वो साझेदारी वाला नेतृत्व, लुइस और क्लार्क का।
हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री लीडरशिप। लुइस की वैज्ञानिक सोच और प्लानिंग और क्लार्क की जमीनी समझ और लोगों को मैनेज करने की स्किल।
एक दूसरे के पूरक थे एकदम। जर्नल्स में कहीं भी उनके बीच किसी झगड़े या ईर्ष्या का जिक्र नहीं है। आपसी सम्मान और तालमेल कमाल का था।
ये आज भी टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है ना?
बिल्कुल। तीसरा और शायद सबसे पेचीदा विषय है सांस्कृतिक टकराव और सहयोग।
हाँ, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ तो ये दल अपनी यात्रा जारी रखने और जिंदा रहने के लिए मंडन, शोशोन, नेज पर्स जैसे कबीलों की मदद पर पूरी तरह निर्भर था।
उनके ज्ञान, उनके घोड़ों, उनके खाने के बिना शायद वो कामयाबी नहीं हो पाते।
हाँ, और दूसरी तरफ वो अमेरिकी सरकार के एजेंट थे। उनका एक छिपा हुआ या खुला मकसद अमेरिकी प्रभाव को फैलाना और जमीन पर दावा जताना भी था।
तो ये रिश्ता मदद का भी था और कहीं ना कहीं भविष्य में होने वाले डोमिनेंस की आहट भी।
बिल्कुल, और जर्नल्स इस दोहरेपन को काफी ईमानदारी से दिखाते हैं।
चौथा विषय है वो वैज्ञानिक भावना, ज्ञानोदय काल की।
हाँ, ये यात्रा सिर्फ जमीन खोजने का मिशन नहीं थी, ये ज्ञान इकट्ठा करने का भी मिशन था, जैसा जेफरसन चाहते थे।
178 नए पौधे, 122 नए जानवर, सटीक नक्शे, ये सब वैज्ञानिक नजरिए से चीजों को देखने, दर्ज करने और समझने का नतीजा था।
पांचवां, जिसे हम अमेरिकी विस्तारवाद की शुरुआत कह सकते हैं।
हाँ, मैनिफेस्ट डेस्टिनी का आइडिया भले ही बाद में आया हो, पर इस यात्रा ने अमेरिका के लिए पश्चिम के दरवाजे तो खोल ही दिए थे।
पूरे महाद्वीप को पार करना, उसका नक्शा बनाना, वहां अमेरिकी झंडा लगाना, ये सब भविष्य के विस्तार की नींव रख रहा था। ये एक जियोपॉलिटिकल एक्ट भी था।
और छठा, सामूरिक प्रयास का महत्व।
हाँ, ये कहानी सिर्फ लुईस और क्लार्क की नहीं है, ये उस पूरे दल की है जिसे कोर ऑफ डिस्कवरी कहा गया,
जिसमें फ्रांसीसी कनाडी दुभाषीय थे, सैनिक थे,
और हाँ, साका गवैया जैसी मूल अमेरिकी महिला और यॉर्क जैसे अफ्रीकी अमेरिकी गुलाम भी थे, जिनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था।
जर्नल्स में कुछ पंक्तियां हैं जो वाकई याद रह जाती हैं, जैसे क्लार्क का वो चिल्लाना, ओशन इन व्यू, ओ द जॉय।
हाँ, वो डेढ़ साल की अनिश्चितता और मेहनत के बाद मंजिल को देखने का जो एहसास है, वो उन शब्दों में कैद है।
और लुईस का वो कथन भी सोचने पर मजबूर करता है जब वे अनजान इलाके में घुस रहे थे, वी वर नाउ अबाउट टू पेनेट्रेट अ कंट्री एट लीस्ट 2000 माइल्स इन विड्थ, ऑन व्हिच द फुट ऑफ सिविलाइज्ड मैन हैड नेवर ट्रॉडन।
हाँ, अब हम कम से कम 2000 मील चौड़े एक ऐसे देश में प्रवेश करने वाले थे जिस पर सभ्य मनुष्य के कदम कभी नहीं पड़े थे। ये उनके काम के स्केल और रिस्क को तो दिखाता ही है, साथ ही उस जमाने की सोच, सभ्य मनुष्य कौन है, की भी झलक देता है।
फोर्ट क्लैटसॉप की सर्दियों की तकलीफों का जिक्र भी बहुत असरदार है।
हाँ, आदमी लकवाग्रस्त, कमजोर है और फोड़ों से बहुत पीड़ित है। कई को पेचिश है, पिस्सू इतने ज्यादा हैं जितने मैंने कभी किसी प्लेग में नहीं देखे। ये जीत के बाद की कड़वी हकीकत और उनकी जबरदस्त सहन शक्ति को दिखाता है।
और क्लार्क का साका गविया के बारे में वो छोटा सा नोट भी बहुत कुछ कहता है।
वह भारतीय महिला जो इस देश में एक पायलट के रूप में मेरे लिए बहुत उपयोगी रही है, पहाड़ में एक दर्रे की सिफारिश करती है।
ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय ज्ञान उनकी सफलता के लिए कितना जरूरी था, भले ही उसे हमेशा उतना क्रेडिट ना दिया गया हो। ये उनके लक्ष्यों को पाने में हर तरह के योगदान की अहमियत दिखाता है।
क्या इन जर्नल से आज की जिंदगी के लिए भी कुछ सीखा जा सकता है? मुझे तो लगता है बिल्कुल हाँ।
जैसे लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट, लुईस और क्लार्क का वो मॉडल जहां अलग अलग स्किल्स वाले लोग आपसी सम्मान से मिलकर काम करते हैं, ये किसी भी टीम या प्रोजेक्ट के लिए आज भी उतना ही रिलेवेंट है।
और प्लानिंग के साथ साथ अडेप्ट करने की क्षमता।
हाँ, योजना तो बनाई पर जब हालात बदले तो फौरन अपनी स्ट्रैटेजी भी बदली। लचीलापन बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, किसी भी बड़े काम के लिए ये जरूरी सबक है। प्लान बनाओ पर जरूरत पड़ने पर उसे बदलने से हिचकिचाओ मत।
और अलग अलग संस्कृतियों के साथ बातचीत करना।
हाँ, हालांकि उनका नजरिया आज हमें थोड़ा सीमित लग सकता है, लेकिन अनजान लोगों से बात करने, उनकी मदद लेने और शांति बनाए रखने की उनकी कोशिश आज की ग्लोबलाइज दुनिया के लिए बहुत अहम है।
बड़ी चुनौतियों से निपटना। उनकी यात्रा ये भी दिखाती है कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए अक्सर मुश्किलों को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना पड़ता है
और रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होता है। डिसिप्लिन और रोज की मेहनत ही आखिर में काम आती है।
और हाँ, रिकॉर्ड रखने की अहमियत, उनका हर चीज को ध्यान से नोट करना
न सिर्फ उनके मिशन के लिए जरूरी था, बल्कि इसी वजह से आज हम इस अद्भुत यात्रा के बारे में इतना कुछ जान पाते हैं। जो लिखा जाता है वो रह जाता है, इसने एक स्थायी विरासत बनाई।
मेरे लिए इन जर्नल से सबसे बड़ी सीख है कि महान उपलब्धियां सिर्फ बड़े विजन या सपनों से नहीं आती।
हाँ, उसके पीछे ठोस तैयारी होती है,
मुश्किल हालात में ढल जाने वाला नेतृत्व होता है, और सबसे जरूरी, रोजमर्रा की अथक मेहनत और लगन।
ये इंसानी जज्बे की एक शानदार कहानी है। और मेरे लिए ये कि ये यात्रा कितनी मल्टीलेयर्ड थी, इसमें एडवेंचर था, साइंस था, डिप्लोमेसी थी और भविष्य के अमेरिका की नींव रखने की वो महत्वाकांक्षा भी थी।
और इन जर्नल्स की खूबी उनकी सच्चाई में है।
हाँ, उनकी ताजगी में। ये बाद में बैठकर लिखी गई कहानी नहीं, बल्कि उसी वक्त, उसी पल में महसूस किए गए डर, हैरत, खुशी और अनिश्चितता का एक तरह से सीधा प्रसारण है। ये दस्तावेज अपने मूल मकसद, पश्चिम को अमेरिकी नजरिए से जानना और खोलना को बखूबी बयान करते हैं।
तो ये थी हमारी आज की चर्चा लुईस और क्लार्क के जर्नल्स पर। एक सवाल शायद सोचने लायक है।
क्या?
कि आज के दौर में जब दुनिया का लगभग हर कोना मैप किया जा चुका है, अन्वेषण या खोज का क्या मतलब रह गया है? क्या आज भी ऐसी कोई अनजान सीमाएं हैं जिन्हें पार करने की जरूरत है? शायद भौगोलिक नहीं पर बौद्धिक या सामाजिक, इस पर सोचा जा सकता है।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।